हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरये हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे आज 30 दिसंबर के शुक्रवार के दिन आप सबका श्री पाजका क्षेत्र में कुंजारगिरी पर्वत पर हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। तो हर ग्रेस नर्तकी माता जी वेलकम यू टू कुंजारगिरी फॉर द फर्स्ट टाइम हियर। हाँ so we welcome you to our yatra by loudly chanting hari bo hari bo hari bo so with your blessings I will try to speak something so aaj sab log subah udupi krishna ke mandir mein gaye the kya kitne log gaye the तो आज सुबह भगवान ने लक्ष्मी का रूप धारण किया था, बहुत सुंदर। कल शाम को भगवान ने वज्र कवच यानी कि हीरे का वस्त्र धारण किया था, बहुत सुंदर। और कल भी इतवार के दिन नहीं कल नहीं परसों इतवार के दिन फिर भगवान वज्र कवच या वज्र मुकुट धारण करेंगे। और कल के दिन क्या होगा ये सस्पेंस रहेगा सबके लिए। और मेरी आपको ये सोचना है विनती है कि ईयर एंड वीकेंड और छुट्टियों का मौसम होने की वजह से उडुपी के मंदिर में बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़। स्कूल के पिकनिक्स आ रहे हैं, बहुत लोग सबके साथ आ रहे हैं, इसलिए कल मैंने कुछ प्लानिंग किया था लेकिन वो भीड़ देख के प्लानिंग नहीं पूरा हो सका। तो एक ही रास्ता बचता है कि सवेरे हम 5 से 7:30 मंदिर में चले जाएँ, थोड़ा उसमें भीड़ कम होती है। और थोड़ा जप करने के बाद में ग्रुप्स में जाके आपको अंदर की जगह, जैसे आज मैंने 25 लोगों को दिखा दिया वैसे कल भी दिखा सकते हैं। और बहुत सुंदर अंदर स्थान है उसके, कल उसका दर्शन करेंगे। और जो कल भी नहीं बचते हैं तो उनको परसों भी 1 तारीख को निकलने के पहले फिर दोबारा जाएंगे। हर सवेरे उडुपी कृष्ण का 5 बजे से बहुत सुंदर से अभिषेक होता है, अनेक आरतियाँ होती हैं बीच में, कितनी आरतियाँ होती हैं उसे गिनती नहीं कर सकते। भगवान को नहलाते हैं सबके सामने, जिनको दर्शन में मुमकिन नहीं है वो क्लोज सर्किट टीवी में देख सकते हैं पूरा दर्शन भगवान का। उसको कहते हैं मूल विग्रह, मूल विग्रह यानी पूरा निर्माल्य जो जितना भी अलंकार पहना है, वस्त्र पहने हैं, मालाएं पहनी हैं, फूल पहने हैं, सब उतार के जो भगवान का मूल शरीर है, मूल विग्रह, उसका दर्शन सवेरे होता है। उसके बाद में जब मैंने आपको बताया था कि अलंकार पूजा होती है, वो अलंकार पूजा जब होती है दर्शन बंद हो जाते हैं, और अलंकार पूजा के बाद में भी दर्शन बंद रहता है जब सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये चार कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र जो हैं, वो आकर भगवान की सेवा करते हैं अदृश्य रूप में, और तभी सेवा करने वाले जो स्वामी जी हैं वो भी बाहर चले जाते हैं। तो हम जब आज बैठे थे तो ये अलंकार पूजा, सनकादि पूजा होने के पश्चात दर्शन दोबारा खुला, और सब लक्ष्मी देवी के रूप में बहुत ही मनोहर, बहुत ही नयन रम्य दर्शन का लाभ हुआ। हमने आप सबके लिए प्रार्थना किया उसमें बैठ कर वहाँ पर, तो यही आनंद है। आप देखेंगे उडुपी मंदिर का जो शेड्यूल है, जिस प्रकार शेड्यूल है उसमें बीच में कोई समय ही नहीं है। अगर आप पूरा दिन मंदिर में रहेंगे, हर एक सेवा को देखते रहेंगे, तो बिल्कुल ही समय नहीं बीच में। भोजन भी ऐसे ही भाग भाग के करना होगा, पूरी सेवा देखेंगे। तो जो पर्याय में जो स्वामी जी सेवा करते हैं, उनका जो टीम होता है वो सवेरे 3 बजे से लेकर लगे रहते हैं रात को 9-10 बजे तक। कंटिन्यूस उनको आरतियाँ तैयार करनी पड़ती हैं, वाती तैयार करनी पड़ती है, तुलसी इकट्ठा करनी पड़ती है, चंदन घिसना पड़ता है, क्योंकि बहुत अनेक 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 किलो चंदन वहाँ पर घिस कर तैयार रखना पड़ता है। हर एक सेवा के लिए चंदन तुलसी तुलसी मंजरी, फिर फल फूल, फिर मिठाई, फिर भोग, ये सब चलते रहते हैं। और जो भोग लगता है, हर एक आरती, हर एक पूजा, हर एक अभिषेक के पहले भगवान को भोग लगते रहता है, और वो भोग सब निकाल के सीधे सबसे पहले मुख्य प्राण को अर्पण करते हैं। मुख्य प्राण जो है वो स्वयं हनुमान जी है। आपने देखा ना, बीच में जो दर्शन बंद था तो एक तरफ और एक भगवान की पूजा हो रही थी, वो मुख्य प्राण हनुमान जी हैं, और सबसे पहले भगवान का महाप्रसाद भोग जो है वो मुख्य प्राण जी को अर्पण किया जाता है। फिर आप और रुकते वहाँ पर तो आपको गरुड़ जी की पूजा भी दर्शन में मिलता आपको, एग्जैक्टली मुख्य प्राण के सामने गरुड़ जी हैं। इस तरह से भगवान को केवल देखना, प्यास ही नहीं बुझती है। इन्होंने देखा, उनको लगा होगा कि अरे देखा नहीं कुछ दिल भर के, दोबारा जाना चाहिए। तो कुछ लोग भी पीछे हट के देखते हैं, फिर टीवी पे देखते हैं, लेकिन ये भगवान का ऐसा मनोहर रूप है कि आप कितने भी बार उनको देखेंगे फिर भी आपका हृदय तुष्ट नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा। यही उनके सौंदर्य का कमाल है, कितना भी देखेंगे आनंद होगा लेकिन आनंद पूरा नहीं होगा, लगेगा और चाहिए, क्योंकि भगवान का सौंदर्य जो है वो अनंत है। इसलिए हमको भी अनंत भावना होनी चाहिए भक्ति और प्रेम की, तो वो अनंत सौंदर्य जो है हमारे लिए भी प्रस्तुत होते रहेगा, दर्शन होते रहेगा, हम समझ पाएंगे उनको। हम सब लोग अब मिलकर भगवान उडुपी कृष्ण को प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो मन है वो इस विश्व के, दुनिया के किसी भी चीज़ की ओर आकर्षित ना हो, क्योंकि हमको लगता है दुनिया में भी सौंदर्य है, स्त्री सुंदर है, पुरुष सुंदर है, और नज़ारा सुंदर है, समा बहुत सुंदर है, और हर सुंदर स्त्रियों को लगता है साड़ियाँ बहुत सुंदर है, अलंकार बहुत सुंदर हैं ज्वेलर के पास में, पुरुषों को लगता है जूते और कैनवस शूज़ और जैकेट, शर्ट पीस, पैंट पीस बहुत सुंदर होते हैं। इस तरह से हर एक सुंदर सुंदर वस्तुएँ जो है तथाकथित यानी सो कॉल्ड इस दुनिया में सब जगह रखी हुई है, और हमारा मन उनकी ओर बार बार आकर्षित होते रहता है। लेकिन हमको देखना यह है कि ये सारा सौंदर्य जो यहाँ पर है, जो आपको दिखाई पड़ रहा है, सब टेम्पररी है, कुछ क्षण के लिए है। सुंदरता, यौवन की सुंदरता, जो भी दिखता है सब कुछ टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है, कुछ समय के लिए नहीं, खत्म हो जाता है। हमारे लिए उस सौंदर्य की आवश्यकता है जो चिरंतन रूप में हमारे लिए संतुष्टि प्रदान करे। वी वॉन्ट दैट हैप्पीनेस विच कम्स आउट ऑफ सीइंग दैट ब्यूटी विच इज अनलिमिटेड एंड इटर्नल, जो शाश्वत हो और सर्वोत्तम हो, ऐसा ही सौंदर्य देखने से हमको शांति आनंद प्राप्त होता है। इसलिए अभी इतने इतने सुंदर सुंदर लोग दुनिया में हम देखते हैं, उनका फोटोग्राफ आता है, 5-10 साल के बाद में कहाँ रहते हैं, वो किधर भी नहीं रहते, सब समाप्त हो जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि उनको कोई देखना पसंद ही नहीं करता है, इतना भद्दा दिखते हो, क्योंकि सब सौंदर्य यहाँ का टेम्पररी है। हमारा ये इच्छा है, इच्छा होनी चाहिए कि हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी आंखें हमेशा भगवान के अनंत सौंदर्य के लिए तड़पती रहे, और उसकी वजह से वो तड़प इतनी अच्छी हो कि दूसरा कोई सौंदर्य हमको अच्छा ही लगे न लगे, कोई मिठाई न लगे हमको सौंदर्य, कोई उसमें आनंद ही नहीं आए हमको, केवल भगवान के सौंदर्य में आनंद आए, भगवान के विषय में आनंद आए, भगवान के अलंकार देख के आए। हाँ, एक उडुपी के मंदिर के एकदम जिस तरह भगवान खड़े हैं, जिस दिशा में, भगवान के लेफ्ट साइड में बाहर मंदिर के एक बड़ा आगार है, वहाँ पर एक स्टोर हाउस है, उसमें भगवान के हीरों के, सोने के, चांदी के, रत्नों के ऐसे अलंकार रखे, अलग अलग अनंत हजारों किलो के हो गए शायद वो, उसमें हीरे रत्न जवार सब कुछ है उसके, और समय समय पर वो निकालते रहते हैं, और सवेरे के समय पता नहीं यशोदा माई, नंद महाराज उनके कान में कुछ बोलते होंगे कि आज मुझे देवी बनना है, आज मुझे गीतोपदेश करना है, आज मुझे माखन खाना है, आज मुझे द्रौपदी बनना है, आज मुझे रुक्मिणी बनना है, भगवान का इंतजार कर रही है ऐसे भाव में। तो ऐसे ऐसे अलग अलग भाव में, वात्सल्य भाव में, मतलब एक माता, जैसे आप लोग भी बहुत सारी माताएं यहाँ पर हैं, पिताजी भी हैं, हमारे बच्चों का स्कूल में होता है ना फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, तो बच्चा कहेगा कि माता जी मुझे रावण बनाओ, माता जी बड़े प्रेम से हमारे बच्चे को रावण बना देते। अब यहाँ पर नाटिका प्रस्तुत करने की तैयारी हो रही है, तो उसमें कुछ माताएं अपने बच्चों को हिरण्यकशिपु बनाएंगी, है ना, नाटक है ना वो, लेकिन बनाएंगे कैसे, बड़े प्रेम से, वात्सल्य भाव से, कि मेरे बच्चे का रोल इसमें हिरण्यकशिपु का है, तो बहुत अच्छी तरह से करेंगे, बिल्कुल नरसिंह भगवान बनेंगे, तो कवच लगाएंगे मुँह पे और सिंह का मुँह बनाएंगे, इस तरह जैसे उस तरह से माता अपने बालक को फंक्शन ड्रेस में बड़े प्रेम से श्रृंगार करती है, वैसे ही उडुपी में पुजारीगण जो है वात्सल्य भाव में कृष्ण भगवान को श्रृंगार करते हैं, और बड़े सुंदर फूल वगैरह लगाकर सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन आपको ये देखना जरूरी है, जब आप देखेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जब आप देखेंगे किसी भी रूप में भगवान रहेंगे, चाहे देवी के हो या देवता के हो या गीतोपदेश के हो और किसी रूप में हो, मत्स्य के रूप में हो, उनके होंठों के ऊपर एक माखन का टीका लगा रहता है हमेशा, वो ऐसा ही रहेगा, जैसे कि बच्चा अगर हिरण्यकशिपु बनेगा ना तो भी लॉलीपॉप चूसते रहेगा, आपने देखा है ना बच्चे जब आते हैं फैंसी ड्रेस में तो हाथ में लॉलीपॉप, यहाँ वेफर ऐसे लेके जाते हैं ऐसे ऐसे, अरे बेटा अभी नहीं बाद में, अभी तो आपको डायलॉग बोलना है, नहीं मम्मी एक बार चूसने दो। वैसे ही हमारे भगवान जो है वो सब वेश धारण करते हैं, एकदम गंभीर लक्ष्मी देवी, लेकिन मुंह में से यहाँ से मक्खन लगाकर चाटते रहते हैं उसको। यही यहाँ का आनंद है, भगवान का जो चटपटा लीला है उसको देखने का आनंद है। तो आप सबको उडुपी यात्रा में हम प्रार्थना करते हैं कि सबका हृदय जो है, सबका हृदय उडुपी कृष्ण भगवान छीन ले, हर ले, अनंत काल के लिए मोहित करके आपको रख दें उनके सौंदर्य से, ये हम सबको भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसलिए आप अभी हो सकता है हमारी यात्रा के ऑफिशियल प्लान में से शायद भीड़ की वजह से कुछ सफल हो या ना हो, मुझे पता नहीं है, आई एम नॉट द कंट्रोलर, लेकिन आप लोगों को सुबह 5 बजे से जाने के लिए वहाँ पर फ्रीडम है, आप जाइए, फिर दोपहर को पहुँचेंगे, शाम को पहुँचेंगे, तो फिर दोबारा जाइए, जाते रहिए आप और देखते रहिए कैसा भगवान का सौंदर्य है। शाम को आप जाएंगे ना, जब उनका चामर सेवा हो चुकी है, अभी शयन सेवा आरंभ होने वाली है, तो उनकी आंखें ऐसे थकी हुई नजर आएंगी आपको, दिन भर सबको दर्शन देने के बाद में नींद आ जाती है ना बालक को, अम्मा नींद आ रही है सुला दो मुझे, वैसा लगेगा आपको कि आपको बता रहे हैं, वैसे देवी के वेश में खड़े हैं, लेकिन ऐसे जैसे आपने उनको हिरण्यकशिपु बना दिया, हाँ तो बहुत देर हो गया, नाटक में टाइम लग गया और बहुत 2 घंटे तक डिब्बे मेकअप करके बैठना पड़ा, फिर 2 घंटे का ड्रामा था, उस पर 4 घंटे चले गए आना जाना फिर ड्रेस करके, तो शाम को जैसे बच्चे होते हैं वे शरण को शुभ का है, लेकिन ऐसे क्या हुआ बेटा, नहीं हिरण्यकशिपु मर गया मेरे अंदर का, अभी मुझे सोना है। वैसे ही भगवान जो है शाम को ऐसे बहुत थके हुए नजर आते हैं। ये सब भाव की बातें हैं, आप देखिए उनको उस नज़र से तो सब प्रकार के उनके सुबह के भाव, दोपहर के भाव, शाम के भाव सब आपको नजर आएंगे और हृदय को बहलाएंगे, आपको हृदय को आनंद देंगे, हृदय को हरण कर लेंगे। हाँ, क्या हरण करना है जीवन में? जो हमारा अट्रैक्शन है भौतिक दुनिया के प्रति उसको हरण करना है और भगवान को वहाँ बिठाना है। जहाँ जहाँ नज़र जाती है और हमको आकर्षित करती है उसको हटाकर वहाँ पर भगवान को रखना है। फिर समय ऐसा एक आएगा कि जो जो चीज़ आप देखेंगे चाहे वो नश्वर भी होगी लेकिन उसमें आप भगवान को देखना आरंभ करेंगे। दैट इज द परफेक्शन, टू सी कृष्णा एवरीवेयर इन एवरी ऑब्जेक्ट, दैट इज अट्रैक्टिव। ये समझ के कि इसमें जो आकर्षकता है टेम्पररी क्यों ना हो, ये भगवान कृष्ण की वजह से है इसलिए उसको हम देखेंगे। तो आप सबको ये मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कि उड़पी यात्रा आपकी तब सफल होगी आपका हृदय भगवान छीन लेंगे। हरे कृष्ण। तभी यहाँ पर हम उड़पी से यहाँ पर आए हैं, ये पाज का क्षेत्र है। जैसे मैंने आपको कल कथा में बताया था कुछ कुछ बातें कि अहि छत्र नाम के जगह से मयूर वर्मा ने अनेक ब्राह्मणों को यहाँ बुलाया रहने के लिए और 30-35-40 किलोमीटर दूर दूर तक सब घर गांव में सब ब्राह्मण लोग बस गए। तो कुड़ियाली नाम के गांव में मध्यगेह भट्ट, नारायण भट्ट ब्राह्मण बस गए। फिर उनको दो पुत्र हुए, एक कन्या हुई और दो पुत्र का देहांत हो गया। फिर वो वहाँ से निकल के पाजका क्षेत्र में आए। वो शिवल्ली ब्राह्मण थे, शिवजी की पूजा करते थे लेकिन भगवान कृष्ण पर उनका, विष्णु पर बहुत श्रद्धा थी उनकी। तो यहाँ पर आए और ये जो पहाड़ है इसका नाम है विमानगिरी या कुंजारगिरी, ऐसा इसका नाम है। और ये कुंजारगिरी के आसपास जितना भी क्षेत्र आपको नजर आता है इसको पाजका क्षेत्र कहते हैं। और ये कुंजारगिरी के नीचे तल में मध्वाचार्य जी का जन्म हुआ था। तो उसकी कथा ऐसी है, जब कलयुग आरंभ हुआ तो कलयुग आरंभ होने के बाद में ये जो शून्यवादी लोग हैं और मायावादी लोग हैं उनका प्रभाव बढ़ गया। शून्यवादी का मतलब क्या है? सब कुछ शून्य है, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है, जो भी आप देख रहे हैं वो शून्य है, आप भी शून्य हैं, हम भी शून्य हैं। हाँ, कितनी भयंकर फिलासफी है ये। आई एम नॉट ज़ीरो, प्लीज़ अंडरस्टैंड, नन ऑफ यू इज़ ज़ीरो, आप कोई भी ज़ीरो नहीं हो, मैं भी ज़ीरो नहीं हूँ, सब लोग व्यक्ति हैं, बस भगवान भी व्यक्ति हैं और हम सब भगवान के अंश हैं, ये सत्य है। लेकिन शून्यवादी लोग भी दुनिया में रहते हैं और शून्यवाद मतलब निराशावाद, जब शून्य हो गए तो फिर आशा कैसे रहेगी उसके अंदर? देयर इज़ नो होप ओनली, एवरीथिंग इज़ ज़ीरो, व्हाई टू लिव ओनली। और एक होता है मायावाद, वो कहते हैं भगवान को आँख नहीं है, भगवान को कान नहीं है, भगवान के पैर नहीं है, भगवान के हाथ नहीं है, भगवान की जुबान नहीं है, भगवान निराकार है, निर्विशेष है, और आप सबके आँखें हैं, सब कुछ है, और आपका जो निर्माण करने वाला है वो अंधा है, वो बहरा है, वो गूंगा है, सब कुछ है, ऐसा कैसे हो सकता है बताओ? जब आपको आँखें हैं तो आपके पिताजी की भी आँखें थी ना, आपको शरीर है तो उनका भी शरीर था, इसलिए आपको भी शरीर प्राप्त है। ये मायावादी लोग भी हैं जो भगवान को शरण नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए भगवान का व्यक्तित्व को मिटा देते हैं, चलो फिर अच्छा हो जाएगा ना। अगर मैंने कहा कि ये टेबल जो है ना ये तो है ही नहीं, जीवित जीवित नहीं है, ये जीवित नहीं है तो इसको शरण जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप व्यक्ति हैं, आपको भावनाएं हैं, आपको क्रोध भी होता है, प्रेम भी आता है, कभी नाराज़ भी हो जाते हैं, कभी कुछ खाना खिलाएगा तो खुश भी हो जाते हैं, तो आपको हर एक प्रकार की भावनाएं हैं, क्योंकि आप व्यक्ति हो, यू आर ए पर्सन। लेकिन पर्सनालिटी को नष्ट करते हैं मायावादी लोग। वो सबसे बड़ा अपराध क्या करते हैं? अपने पर्सनालिटी में अगर करेंगे नष्ट तो ठीक है, लेकिन भगवान के अंदर भी वो नष्ट करने का प्रयास करते हैं। एक बार भगवान के व्यक्तित्व को नष्ट कर दिया तो फिर उनको शरण जाने की कोई जरूरत नहीं है। दे नो नीड टू सरेंडर, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, बिकॉज ही हैज़ नो फॉर्म, ही हैज़ नो आइज, उनको आँखें नहीं है, पैर नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब दिमाग भी नहीं होगा। कोई डरने की जरूरत नहीं, आप जो करना स्वच्छंद विहार करो। तो इस तरह से मायावाद और शून्यवाद का बहुत आतंक हो गया था। उस समय शास्त्र में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी के पास सब देवता लोग गए और कहा कि भगवान का जो भगवान का स्थान है वो लोग, ये लोग नष्ट करते जा रहे हैं, और जो इनोसेंट निष्प्राण मतलब क्या प्रामाणिक भक्त हैं, जो निष्पाप हैं भक्त, वो भगवान को मानते हैं, भगवान को भजन पूजन करना चाहते हैं, वो बेचारे अकेले पड़ गए हैं। ये लोग जगह जगह जाके प्रचार कर रहे हैं शून्यवाद का, और मतलब क्या कहते हैं पौर्वात्य, यानी कि ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर वो शून्यवाद, और भारत में अधिकतर मायावाद फैल रहा था। देवता लोगों ने जाके कहा कलयुग में बहुत आतंक हो रहा है, भगवान को भजन पूजन नहीं हो रहा है, शुद्ध भक्ति का मार्ग जो नष्ट होते जा रहा है। तो सब लोग ब्रह्मा जी के नेतृत्व में विष्णु जी के पास गए। तो विष्णु ने कहा कि अभी मेरा अवतार होने का कोई शेड्यूल्ड समय नहीं है, निर्धारित समय नहीं है। तो फिर भी देवताओं ने कहा कुछ करना चाहिए, क्योंकि अभी पृथ्वी के लोगों का कल्याण नहीं हो रहा है। तो भगवान विष्णु ने आए हुए सभी देवताओं पर एक बड़ी प्रेम की नजर घुमाई, जैसे आप लोग बैठे हैं शांति से, सब देवता लोग बैठे थे, सबकी ओर भगवान ने प्रेम से देखा, सबकी ओर, और उनकी नजर जो है वायुदेव पर जाके रुक गई, और वायुदेव को बहुत देर तक वो निहारते रहे। फिर कहा वायुदेव आपको अवतार लेकर जाना होगा, और ये जो मायावाद और शून्यवाद है इसका खंडन करना होगा, और मेरा जो व्यक्तित्व है उसको प्रचार करना पड़ेगा, और मेरे तरफ जो शुद्ध भक्ति का मार्ग है उसको स्थापित करना होगा। तो वायुदेव बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान ने उनको योग्य समझा। जब भगवान कुछ आदेश देते हैं तो भगवान उस आदेश को पूरी करने की शक्ति जो है वो भी उसमें दे देते हैं। अलॉन्ग विद द ऑर्डर द एम्पावरमेंट टू फुलफिल द ऑर्डर ऑल्सो कम्स। जब भगवान ने उनको आदेश दिया उसी समय वायुदेव के अंदर वो शक्ति भी प्राप्त हुई, जिसके द्वारा वो आदेश को पूर्ण करने में समर्थ होंगे। जब ये हुआ, ये मायावाद को अद्वैतवाद भी कहते हैं। द्वैत का मतलब दो होना, अलग अलग होना, अद्वैत मतलब एक होना, दो नहीं होना। क्या मतलब है इसका? अद्वैतवादी लोग क्या कहते हैं कि हम और भगवान में अंतर नहीं है, हम ही भगवान हैं। जब हम जप करेंगे तपस्या करेंगे तो हम सब एक दिन भगवान बन जाएंगे। इतना अच्छा लगना सुनने को, केवल जप करना है बस, सब लोग विष्णु बन जाएंगे एक दिन। ये सब इतना भूल भुलैया है, इतना भयंकर अपराधी भावना है कि हम भगवान नहीं है, हम अभी माया में फंसे हुए हैं, और एक दिन भजन करेंगे तपस्या करेंगे नियम पालन करेंगे तो सब लोग भगवान बन जाएंगे। तो कितने भगवान होंगे दुनिया में, और सब झगड़ा करेंगे कौन बड़ा हो कौन छोटा, फिर सब जगह आतंक मचेगा, क्योंकि सब लोग सुप्रीम बनना चाहते हैं। ये इसी को मायावाद कहते हैं कि अब लोग हम माया के अंडर हैं, और भजन करने के बाद माया के प्रभाव से मुक्त होकर सब भगवान है ये जान लेंगे पहले कि हम भगवान हैं, फिर भगवान बन भी जाएंगे। तो द्वैतवाद का मतलब है कि हम और भगवान अलग हैं, हम अणु मात्र हैं और भगवान विभू हैं, मतलब भगवान अनंत है और हम लिमिटेड हैं, मर्यादित हैं। ये द्वैतवाद है। और विशिष्ट द्वैतवाद क्या है कि जो अणु मात्र भगवान का अंश है वो भगवान का सेवक है, भगवान की सेवा करना उसका धर्म है, इसको विशिष्ट द्वैतवाद कहते हैं। तो भगवान ने वायुदेव को आदेश दिया कि आप जाके ये विशिष्ट द्वैतवाद जो है उसको स्थापन करो, जिसके द्वारा लोग समझें कि जीव सच्चिदानंद है, भगवान का अंश है, और भगवान सच्चिदानंद है लेकिन अनंत सच्चिदानंद है, परिपूर्ण है, उनका ही अंश जीव है, और जीव को उनमें जाकर मिलना नहीं है, जीव को उनकी सेवा करनी है। और परिपूर्ण अवस्था में भी जब जीव परिपूर्ण हो जाएगा, माया के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तब भी वो सच्चिदानंद अनुरूपी रहेगा, लेकिन माया के प्रभाव से मुक्त होने के बाद में वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाएगा, मतलब भगवान के भक्ति के उद्देश्य में एक रूप हो जाएगा, भगवान से एक रूप नहीं हो जाएगा। भगवान हमेशा ही अलग रहेंगे। जब अलग होते हैं तो उनमें प्रेम होता है। पति पत्नी में प्रेम क्यों होता है कि वो दो होते हैं। माता पुत्र में प्रेम क्यों होता है कि वो दो होते हैं, माता अलग होती है, प्रेम पुत्र अलग होता है, इसलिए प्रेम का संबंध होता है। और प्रेम का संबंध होने के लिए दो व्यक्तियों की होना जरूरी है, मिनिमम दो से अधिक भी हो सकते हैं। एक माता अपने चार बच्चों पर प्रेम कर सकती है, लेकिन एक रूप होने पर प्रेम नहीं होता है। देयर हैज टू बी यूनिटी ओनली इन पर्पस, यूनियन इन पर्पस ओनली, नॉट इन द बॉडी एंड नॉट इन द सेल्फ। तो ये सब सिखाने के लिए वायुदेव को भगवान ने शक्ति से आवेशित कर दिया। और फिर यहाँ पर क्या हुआ पृथ्वी पर, ये तो भगवान के धाम में हो रहा है। यहाँ पर मकर संक्रांति का उत्सव आया, और मकर संक्रांति के उत्सव में अनंतेश्वर मंदिर जहाँ पर हम कल गए थे, वहाँ पर मध्यगेह भट्ट यानी मध्यगेह परिवार के नारायण भट्ट और उनकी पत्नी वेदवती ये भी आए हुए थे। बड़ा जलसा था, सब भक्त लोग सब जगह से आए थे। अचानक एक आदमी पागल सा हो गया और पागल सा व्यवहार करने लगा। और ये जो है ना, ये देखो, ये आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं दीपस्तंभ, जिसके आप नीचे बैठे ना, ये पतरा जो पतरे से ऊपर भी आप गया हुआ है ना, इसको उत्सव के दिन इसमें दीपक लगाते हैं बहुत सुंदर से। हर साउथ इंडिया के मंदिर में आपको ये दीपस्तंभ मिलेगा, फ्लैग पोल बोलते हैं उसको, इसमें झंडा भी लगाते हैं दीपक भी लगाते हैं, हर मंदिर में मिलेगा। और नॉर्थ में जाएंगे तो वही जो स्तंभ है वो गरुड़ स्तंभ के रूप में आपको दर्शन होगा उसका, उसके अंदर गरुड़ जी का आसन रहता है। तो स्तंभ होना बहुत जरूरी है मंदिर में। तो उसके ऊपर वो चढ़ गया और ऊपर कुछ अलग अलग व्यवहार करने लगा पागलों की तरह, सब लोग देखते रह गए, सबका ध्यान उसके ऊपर आकर्षित हो गया। जब सबका ध्यान उसके ऊपर गया तो उसका भाव अचानक बदली हो गया, एकदम गंभीर हो गया वो। पहले पागल सा व्यवहार कर रहा था, अचानक गंभीर हो गया वो, एक धीर गंभीर व्यक्ति की तरह। और उसने घोषणा की कि बहुत ही जल्द भगवान वायुदेव का अवतार आने वाला है और वो मायावाद और शून्यवाद को चीर फाड़ कर फेंक देगा, नष्ट कर देगा, और भगवान का व्यक्तित्व और भगवान की भक्ति का प्रचार करेगा। सब लोग ने सुना, जैसे कि आकाशवाणी हो रही है, ऐसा उसने घोषणा किया। सब लोग दंग रह गए सुनकर, अरे इतना महान अवतार आने वाला है। अचानक वो उतर गया और भीड़ में गायब हो गया, किसी को नजर नहीं आया उसके बाद। मध्य गेह नारायण भट्ट जो थे वो भी उस सभा में थे, वो भी सुन रहे थे। उनको पता नहीं था कि ये जो अवतार होने वाला है उस लीला में उनका भी भाग होगा, ये उनको पता नहीं था। वो सुने उन्होंने, बहुत आनंद हो गया उनको, क्योंकि वो भी स्वयं भगवान के व्यक्ति रूप भगवान के नारायण के भक्त थे। उनकी पत्नी भी बड़ी विष्णु की भक्त थी। वो दोनों अपने गाँव में चले गए। उनके दो पुत्रों का देहांत हो चुका था और वो कन्या को लेकर पाजगा में आए थे। फिर और एक पुत्र होने के लिए, अपना वंश चलाने के लिए उन्होंने 12 वर्ष तपस्या की। और यहाँ से 12 किलोमीटर जो उडुपी का अनंतेश्वर मंदिर है, रौप्य पीठ तौलय पीठ, जिसका वर्णन हमने कल किया था, वहाँ जाकर उन्होंने 12 साल तक केवल दूध पीकर और कोई आहार नहीं, केवल दूध पीकर उन्होंने उपवास किया और अनंतेश्वर अनंत पद्मनाभ की सेवा की उन्होंने। 12 वर्ष के पश्चात उन्होंने फिर अभी सोचा कि अभी हमें पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो वो अनंतेश्वर में फिर आए, अनंतेश्वर भगवान का आशीर्वाद लिया और फिर पति पत्नी का संबंध हुआ। और उस समय वायुदेव वेदवती के गर्भ में उन्होंने प्रवेश किया। जब जीव प्रवेश करने का समय आया तो वायुदेव स्वयं जो है वेदवती के गर्भ में प्रवेश किए। 3 महीने में जब उनकी गर्भावस्था आई तो पुंसवन विधि किया गया। ये पुंसवन विधि क्या होता है? पुत्र प्राप्ति के लिए विधि होता है। और 7वें मत में स्वाद भक्षण विधि हुआ, हम लोग को उसको कहते हैं सीमांत पूजन। 7वें महीने में होता है ना, जब बालक 7 महीने का अंदर होता है तो माता को बहुत सारी इच्छाएँ आती है मन में, कि जो जलेबी खाएँ और भजिया खाएँ और कुछ उसल पाव खाएँ, और कोई कहेगा अभी लज़ानिया खाएं, कोई कहेगा पिज्ज़ा खाएं। जब ज़माना बदलता है तो स्वाद भक्षण विधि के आइटम भी बदल जाते हैं। पुराने ज़माने में माता कहेगी लड्डू खाना है, हाँ ऐसा ऐसा अलग अलग नाम कहेंगे, मालपूड़ी खाना है, अभी माता कहेगी पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है। बट प्रिंसिपल सेम है। 7वां महीना गर्भावस्था होने के बाद में अलग अलग मन में अचानक इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं। तो इनका भी स्वाद भक्षण सेरेमनी हुआ। और फिर विजयादशमी के दिन, जिस दिन भगवान रामचंद्र ने रावण का वध करके सीता जी को पुनः प्राप्त किया, उसको कहते हैं विजयादशमी। उस दिन आकाश में दुंदुभियाँ बजने लगी, ड्रम्स यानी कि अलग अलग प्रकार के वाद्य बजने लगे। और उस समय, उस सुंदर समय पर 1238 साल में, कलयुग के 4339 साल जब बीत चुके थे, उस समय एक पुत्र का जन्म हुआ। और उस समय उसका जात कर्म किया गया। जात कर्म का मतलब है कि जन्म के दूसरे दिन बालक को माता गोद में लेके बैठती है, स्नान करने के बाद सब परिवार के लोग सज धज के आते हैं, मिठाइयाँ और गिफ्ट लेके आते हैं, दक्षिणा लेके आते हैं, और पुरोहित जी आते हैं और बालक का कुंडली बनाते हैं।
और कुंडली बनाकर बालक का भविष्य क्या है, बालक क्या क्या करेगा, उसका सबके सामने वर्णन करते हैं, सब लोग बड़े प्रेम से सुनते हैं। तो उस जात कर्म में जब पुरोहित जी आए तो उन्होंने देखा कि इस बालक के कुंडली में 32 ऐसे लक्षण हैं जो एक महापुरुष के लक्षण है, एक अवतार के लक्षण है। तो उन्होंने वर्णन किया कि ये साधारण पुरुष नहीं है, एक साथ 32 लक्षण पूरी तरह से, और साथ में बताया कि 6 ऐश्वर्य भी, यानी कि बल, ज्ञान और यश और सुंदरता और बुद्धि और वैराग्य, ये 6 ऐश्वर्य पूरी पूर्व अवस्था में 32 लक्षणों के साथ में इस बालक में उपस्थित हैं, इसलिए बालक जो है बड़ा दिव्य कार्य करेगा। और कुंडली से उन्होंने बता दिया कि ये शून्यवाद मायावाद को नष्ट करेगा और भगवान के व्यक्तित्व को स्थापन करेगा, और भगवान के व्यक्तित्व को स्थापन करेगा और भगवान की भक्ति सबको प्रदान करेगा, इस तरह से वर्णन किया गया। उसके बाद में जब ये जात कर्म का वर्णन हो रहा था, तब जाकर मध्यगेह नारायण भट्ट ब्राह्मण को और वेदवती को उस घटना की याद आई मकर संक्रांति की, जिस समय वो पागल जैसा आदमी कुछ घोषणा कर रहा था, तब मुझे समझ में आया कि वो घोषणा जो है हमारा जीवन है, एक्चुअली हमारे जीवन में उसकी सेवा होगी, उसके प्रमाण हमारे जीवन में होगा। ये उनको ध्यान में आया कि वो जो ऐलान हुआ था उस दिन उसका संबंध इस बालक के जन्म से है। फिर 40 दिन के बाद में निष्क्रमण संस्कार हो गया, हमारे इसमें कहते हैं ना मेडिकल में 40 डेज ऑफ सेक्लूजन, अभी तो कोई पालन नहीं करता है, तुरंत नेक्स्ट डे काम पे चले जाते हैं, ऑन ड्यूटी जस्ट गेट टू विरार, बट डिलीवरी होने के बाद 40 डेज बालक को दिन रात दुग्ध पान कराना होता है और बहुत प्रकाश वाले जगह पर रहते नहीं हैं, थोड़ा सा सेक्लूजन में रहते हैं एकांत में। तो ये संस्कार जब पूरा हुआ तो बहुत सुंदर घटना हुई, 40 दिन तक माता और बालक एक ही जगह पर थे, एक ही कमरे में, बाहर नहीं पड़े घर के। 40 दिन के बाद जब पहली बार बच्चा बालक को लेके माता घर के बाहर निकली तो सबसे पहले भगवान विष्णु के मंदिर में गई, और भगवान विष्णु के मंदिर में जाने के पश्चात आगे 3 व्यक्ति, पीछे 4 व्यक्ति, बीच में पति पत्नी और बालक और सखियाँ, ऐसे वो जुलूस से सजा रहे थे। दर्शन करके, भगवान का पूजन करके, भगवान को माला लेकर, माला प्रसादी लेकर जब लौट के आ रहे थे तो अंधेरा हो रहा था, और लोग कहने लगे ये रास्ते के अंदर ब्रह्म राक्षस रहता है। ब्रह्म राक्षस का मतलब होता है 11 प्रकार के भूत जैसे वर्णन आते हैं, भूत, प्रेत, बेताल, डाकिनी, वैसे ब्रह्म राक्षस जो है 11वां भूत का स्वरूप है और सबसे भयंकर माना गया उसको। तो ये ब्रह्म राक्षस उस रास्ते पर है, ऐसा लोगों को याद आया, वो क्या करे, जाना तो है घर पे। तो अचानक जब वो बीच जंगल से गुजरने लगे तो 2-4 लोगों को खून की उल्टियाँ हुई, उसमें से एकदम डर गए लोग, क्या अचानक क्या हो गया, वो एकदम धड़ाधड़ खून की उल्टियाँ करने लगे, और एक को उसमें से उस ब्रह्म राक्षस ने झपट लिया और उसके मुंह से वो ब्रह्म राक्षस ने बोला कि मैं इतना भयंकर हूँ कि आप सबको एक साथ नष्ट कर सकता हूँ, जान से मार सकता हूँ, लेकिन मैं इस अवस्था में बहुत पीड़ित हूँ और आपके साथ में जो बालक है वायुदेव का अवतार है, अगर इसके चरण कमल मेरे सर पर लगाए जाए तो मैं तो मुक्त हो जाऊँगा ही, लेकिन जिसको मैंने झपट लिया है वो व्यक्ति भी मेरे प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। तो उस समय इस बालक का जो चरण कमल है उस व्यक्ति पर, उसके सर पर लगाया गया जिसको ब्रह्म राक्षस ने झपट लिया था, और जैसे ही उस चरण, बालक के चरण का स्पर्श हुआ तो उसका भूत का प्रभाव जो नष्ट हो गया, ब्रह्म राक्षस की मुक्ति हो गई, और जिसको झपट लिया गया था वो एकदम ऐसा निश्चेष्ट सा हो गया, मतलब बहुत थक गया, ऐसे उसकी अवस्था हो गई, लेकिन वो जो पागलपन का उसका प्रभाव था ब्रह्म राक्षस का, उससे वो नष्ट हो गया। उसके बाद में एक विशेष चीज जन्म से ही नजर आई सबके मन में कि ये बालक को बहुत भूख लगती थी, क्योंकि वो किसके अवतार थे, हनुमान जी के, मतलब वायुदेव के पुत्र थे ना, वो वायुदेव का अवतार है, पहले अवतार कौन थे, हनुमान जी, वो जन्म होते ही आकाश में गए, उनको लगा कि ऑरेंज है, अच्छा संतरा जी, हाँ आकाश में सूर्य के रूप में, उसको खाने के लिए निकल गए। दूसरे अवतार कौन थे उनके? भीमसेन। अरे बेचारे 14 साल वनवास किया पांडवों ने, हाँ, और कुंती देवी को पता था कि हमारे भीमसेन की भूख कितनी तेज़ है, तो इसलिए वो जो भिक्षा करते थे वो भिक्षा का आधा हिस्सा भीम को देते थे और आधा हिस्सा बाकी लोग बांट के खाते थे। फिर भी 14 साल ऐसा कहा है कि भीम हमेशा भूखे ही रहे, उनका तो कभी तृप्ति हुई नहीं। एक दो बार हो गई तृप्ति, जब बकासुर को मारने का समय आया ना तो उनको बैलगाड़ी भर के खाना मिला, तो वो इतने भूखे थे उन्होंने एक हाथ से बकासुर को ऐसा पकड़ के रखा, दबा के रखा, एक हाथ से खाते रहे, पूरा फिनिश किया, फिर बकासुर को मार दिया। और उन्हीं के लाइन में वही अवतार लेकर आ रहे हैं, भीमसेन स्वयं, हनुमान जी स्वयं आ रहे हैं। उनका नाम वासुदेव रखा गया, वो बताने को भूल गया, उनका नाम वासुदेव रखा गया क्योंकि वो भगवान वासुदेव के मिशन को पूरा करने वाले, जैसे उनका नाम ही वासुदेव रखा गया, कृष्ण के, कृष्ण का नाम रखा गया, वासुदेव के पुत्र वासुदेव। तो आई विल आस्क द लेडीज हियर, जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, जब नए नए बच्चे हुए थे आपको, नया नया बच्चा हुआ था तो कितने घंटे में एक बार आप दूध पिला देते बच्चे को? यस, ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर हाउ लॉन्ग? हाँ, एवरी 3 आवर्स, रात को भी, दिन में 2-3 घंटे में एक बार देना पड़ता है। हमारे वासुदेव जी हर आधा घंटे रोते थे, आफ्टर एवरी हाफ एन आवर, और माता को दूध ही पूरा नहीं होता था, और आधा घंटे के बाद भी जब पिलाती थी तब दूध खत्म होने के बाद भी ये रोते रहता था, इतनी उसको भूख थी। तो जब 3 महीने पूरे हुए इनके जन्म के बाद में, तो अभी सॉरी 6 महीने पूरे हो गए, अन्नप्राशन करते हैं ना हम लोग, ग्रेन सेरेमनी, बच्चे को पहली बार अन्न खिलाते हैं, तो इनकी अन्न सेरेमनी बहुत अद्भुत हो गई क्योंकि ये अद्भुत ही थे बिल्कुल। तो ऐसा हुआ कि 6 महीने का समय हो गया, मतलब 6 महीने बीत चुके थे, और ये माता जो है कभी भी अपने बालक से अलग नहीं होती थी, उनको मुमकिन ही नहीं था बालक को छोड़ के जाना, इतनी वो बालक से आसक्त थी। लेकिन एक बार कुछ काम से जाना पड़ा उनको, तो उन्होंने जो उनकी बहन थी, क्योंकि एक बहन तो थी ना पहले से, दो बालक तो ख़त्म हो गए थे लेकिन एक बहन तो थी, बड़ी बहन थी, उनके जिम्मे सौंप के माता जी बाहर चली गई। उन्होंने कहा कि बच्चे को संभालना, लेकिन माता जाते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगा, बालिका तो एकदम अचंभित हो गए, क्या करना है अभी, समझ में नहीं आ रहा, माता तो नहीं, उसको दूध चाहिए होगा, भूख लगी होगी, क्या करें क्या करें क्या करें। बहुत देर तक वो बालक को कुछ गीत गाया, उसने कुछ गीत गा के कुछ संभालने का कोशिश किया, वो संभलता नहीं था, रोता रहा, फिर बाहर जाके देख रही है माता आ रही क्या, दूर जाके देख रही आ रही क्या, फिर अंदर आके बालक को संभल रही है। अचानक उसके मन में ऐसा आया कि भूख तो लगी होगी उसको, तो वहाँ पर एक गायों का खिलाने वाला एक अन्न था, एकदम रफ अन्न था, मतलब हमारा अन्न कैसा होता है पुरुष आदमियों का, सब फाइन ग्रेन, चावल है, गेहूँ है, लेकिन रफ ग्रेन्स होते हैं जो जानवर लोग खाते हैं, तो उसका पूरा एक 40 किलो का बोरा वहाँ पर था। उसने उसको छेद किया और कुछ दाने गिराए, तो बालक ने झपट लिए उसको तुरंत, और तुरंत खा लिया। फिर उसको खाने के बाद बालक शांत हो गया, तो बच्चे को लगा कि अच्छा है, बालक शांत हो गया, तो बच्चे खेलने चली गई और बालक भी शांत है, और खेलने चली गई और खेलते खेलते आगे जाके माता को ढूंढ लिया और बुला के लेके आई। जब बुला के लेके आई तो जिस जगह पर बालक को छोड़ के गई थी वहाँ बालक नहीं था, तो बहुत दुख हुआ उनको, बहुत आश्चर्य हुआ, कहाँ गया वासुदेव, कहाँ गया, यहाँ पर रखा था, और देख रहे हैं कि वो बोरा जो था 40 किलो का वो भी गायब हो गया, मतलब गायब नहीं हुआ है, वही है, लेकिन सब धान्य जो है वो समाप्त हो चुके थे। फिर बहुत ढूंढने के बाद में क्या मालूम पड़ा कि वो बोरे के अंदर बालक बैठ कर आराम से सब ग्रेन्स खा लिया उसने। 40 किलो जो गाय का अन्न था वो बालक ने बोरे के अंदर घुस के सब समाप्त कर लिया। इस प्रकार से बड़े अद्भुत तरीके से उसका अन्न प्रश्न निधि हुआ, ज़्यादा कुछ कष्ट नहीं करना पड़ा, अपने आप ही हो गया सब। एक दिन इनकी शक्ति भी बहुत थी, भूख भी बहुत थी, तो एक दिन रेंगते गौशाला में गए, और एक बड़ा बैल था उधर, बड़े बड़े सिंह थे उसके, उसको जाके पूछ पकड़ लिया जोर से, तो जैसे ही पूछ पकड़ लिया तो बैल थोड़ा हिल गया ऐसे और दौड़ने लगा, तो इसे फिर भी पूछ नहीं छोड़ा, और पूछ पकड़ के लटक के बालक जा रहा है, और बैल जो है वो दौड़ रहा है, उसको अजीब लग रहा है ना, कोई पीठ पे लटका हुआ है, वजन लटका हुआ है, छोड़ नहीं रहा है और लगता है जीवित भी है, ऐसा कुछ स्पर्श भी हो रहा है उसको, तो उसको छुड़ाने के प्रयास में वो यहाँ वहाँ ऐसे दौड़ रहे हैं। ऐसी लीला मुझे अभी भगवान कृष्ण की भी याद आ रही है। भगवान कृष्ण बहुत छोटे थे गोकुल में, बहुत छोटे, रेंगते हुए थे, चलने को भी आता नहीं था उनको। हमारे बालक कैसे होते हैं, जब चलते चलने को सीखते ना, तो पहले ये टेबल को या कुर्सी को ऐसे पकड़ के खड़े होते हैं ना, या आपके पैंट को पकड़ के, आपके हाथ को पकड़ के खड़े होते हैं और फिर खड़े रहने का प्रयास करते हैं, फिर धीरे धीरे चलते हैं, फिर आदमी चलने को सीखते हैं। वैसे ही भगवान कृष्ण जो है गौशाला में गए और छोटे छोटे बालक थे गाय के बछड़े, वो भी वहाँ यहाँ खेल रहे थे, तो उनकी पूँछ पकड़ लिया कृष्ण बलराम ने। जैसे ही पूँछ पकड़ लिया तो बालक बछड़े थे वो डर गए एकदम से और भागने लगे, तो पूँछ को पकड़ कर रखा इन्होंने, तो बालक जो गिर गए पेट के बल पर, पेट के बल पर गिर रहे, तो पेट के नीचे क्या है, जमीन पर गोबर और गौमूत्र का बहुत फाइन मिश्रण है, वहाँ पर एकदम सुपर फाइन मिश्रण, अभी देखा है ना आपने, पैर रखते ही फिसल जाते हैं सब लोग उसमें, तो ऐसे पेट के बल पर गोबर गोबर गौमूत्र के मिश्रण में गिर गए और आगे से बछड़े जो है भाग रहे हैं, पीछे से पूँछ पकड़ के ये पेट के बल पर स्केटिंग कर रहे हैं पूरी गौशाला। और रोहिणी माता जो है बलराम जी की माता, वो देखती है, अरे कितना सुंदर दृश्य है, कृष्ण बलराम दोनों बछड़े की पूँछ पकड़ के घसीटते जा रहे हैं और आंखों में आंसू आते हैं प्रेम के रोहिणी के, बोलते यशोदा दीदी जल्दी आ जाओ, देखो गौशाला में क्या हो रहा है, यशोदा भी भगवान के आती है, देखते कृष्ण बलराम बछड़ों की पूँछ पकड़ के पेट के बल पर सभी गौशाला में घूम रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर वासुदेव जो है बालक के नहीं बड़े बैल की पूंछ पकड़ के लटक के, ये तो स्केटिंग कर रहे थे पेट के बल पे, ये लटक के जा रहे हैं और बैल जो है समझ में नहीं आया उसको क्या हो रहा है, इसलिए वो गौशाला छोड़ के बाहर चला गया और जंगल में चला गया और दिन भर घूमता रहा। ये लोग सब लोग देखने को गए, वासुदेव गौशाला में गया था, कहाँ गया, गौशाला में तो नहीं है, गौशाला के बाहर देखा कहीं भी नहीं मिला, दिन भर सभी सखियाँ माता पिता ढूंढते रहे, शाम तक नहीं मिला, और शाम के बैल शाम को लौट के आया, तभी भी ये लटका हुआ ही था उसके पूछ पर। इस तरह से वासुदेव ने बचपन की लीला की, उस समय उसका उम्र 1 साल का था, तो भगवान को वासुदेव के पिताजी मध्यगेह नारायण भट्ट ने प्रार्थना की, ये बच्चा बहुत चंचल है, यहाँ वहाँ भटकते रहता है, आप इनकी रक्षा करना। 3 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में एक बार इनको एक फंक्शन में लेके गए, सब लोग सुन रहे ना, बोलिए हरि बोल। 3 साल की उम्र में उनको एक शादी में लेके गए, अभी देखो यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ हाथ में कुछ गोद में, कुछ चल रहे हैं, कुछ बड़े हैं, तो वैसे इस 3 साल के बालक को लेकर वो शादी में चले गए। वासुदेव को शादी वादी में ऐसे उत्सव में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, उनको बचपन से केवल भगवान का मंदिर, भगवान की पूजा, भगवान का स्तोत्र पठन, इसी में इंटरेस्ट था, उसी में उनका दिल लगता था। तो शादी में गए तो सब लोग माता पिता गपशप लड़ाने में बिजी हो गए, पिताजी बड़े लोगों से मिलने में बिजी हो गए, माताजी औरतों से बिजी हो गए, और वासुदेव बैठा रहा, उसको बोर हो गया बहुत। तो वहाँ से निकल के वो कुड़ियाली गांव में एक विष्णु के मंदिर में गए और बड़ी तीव्रता से एकाग्रता से उन्होंने विष्णु की आराधना की और प्रार्थना की, सब पुजारी दंग रह गए, इतना सा बालक जो है इतनी एकाग्रता से भगवान को पूजन कर रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं। फिर वहाँ से निकल गए और 12 किलोमीटर चलते चलते 3 साल का बालक अकेला उड़पी गए, अनंतेश्वर के मंदिर में गए और वहाँ पर बैठकर उन्होंने भगवान से कई घंटों तक प्रार्थना की, सबके सामने कई ही श्लोक बोले गए, प्रार्थनाएं बोली, सब पुजारी दंग रह गए, देखते अरे बालक के साथ में कोई है नहीं, माता नहीं पिता नहीं, अकेला कहाँ से आया, पूछ रहे आप कहाँ से आए हो, फिर भी वो पूजा में भगवान से प्रार्थना करने में मग्न है। और यहाँ पर अचानक उनको याद आया, अरे वासुदेव कहाँ है, सब शादी में ढूंढा उनको कहीं नहीं मिले, फिर यहाँ गए वहाँ गए, इसके घर में गए उसके घर में, कहीं पर नहीं प्राप्त हुए, और ढूंढते ढूंढते शाम तक वो अनंतेश्वर के मंदिर में पहुँच गए। अनंतेश्वर मंदिर में देखा तो वासुदेव जी वहाँ पर बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो माता ने पूछा तुम यहाँ कैसे आ गए, साथ में कौन था, उन्होंने कहा प्रत्यक्ष भगवान नारायण ने मुझे हाथ पकड़कर अपने मंदिर में लेके गए, फिर वहाँ से श्री हरि ने मुझे प्रत्यक्ष हाथ पकड़कर अनंत पद्मनाभ के मंदिर में लेके आए। और तभी वहीं पर वासुदेव जी के पिताजी ने अनंतेश्वर से प्रार्थना किया कि कृपा करके मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए, यहाँ वहाँ ढूंढते रहता है, पता नहीं कोई जानवर उसको कष्ट दे दे, कोई व्यक्ति कोई डाकू कोई लुटेरा कोई लुचक्का आदमी जो है इनको तंग करे, इसकी आप रक्षा कीजिए। इसलिए बालक की रक्षा के लिए मध्य के मठ ने वहाँ पर प्रार्थना की। बोलो श्री वासुदेव जी महाराज की। इसके आगे की कथा हम वासुदेव का जन्म जहाँ पर हुआ उसके घर पे जाकर करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहाँ की कथा ऐसी है कि परशुराम जी ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि समुद्र से जमीन मांग ली, परशु फेंक कर बहुत लंबा पट्टा जमीन का जो है प्राप्त कर लिया, और फिर ब्राह्मणों को भी दान दे दिया उसमें से कुछ कुछ। और यहाँ पर जो क्षेत्र है बाजा का क्षेत्र, यहाँ पर उन्होंने इस पर्वत पर जिसका नाम कुंजारगिरी है, कुंजारगिरी देवी को स्थापन किया उन्होंने। और ये कुंजारगिरी देवी जो है, इसको विमानगिरी देवी भी कहते हैं, ये कुंजारगिरी देवी जो है ये योग माया है स्वयं, और योग माया मतलब श्रीमती राधा रानी। हमारे वैष्णव गौड़ीय सिद्धांत में ऐसे कहा गया कि भगवान की दो शक्तियाँ हैं, भगवान की तो अनंत शक्तियाँ हैं, पराश शक्ति विविध ही वसूयते, भगवान की अनंत पराशक्तियाँ हैं, लेकिन उसमें प्रमुख तीन शक्तियाँ हैं जिसके विभाग के रूप में अनंत शक्तियाँ हैं। एक विभाग है अंतरंग शक्ति, दूसरा विभाग है बहिरंग शक्ति, और तीसरा विभाग है तटस्थ शक्ति। तो जो तटस्थ शक्ति है वो हम सब हैं, मार्जिनल पोटेंसी, हम सब लोग भगवान के तटस्थ शक्ति हैं, बीच में हैं, और भगवान के अंश हैं, और भगवान के द्वारा ही निर्मित हैं हम लोग। और हमारे इस तरफ है अंतरंग शक्ति जिसको योग माया भी कहते हैं, और योग माया स्वरूप शक्ति जो है उसका मूर्तिमान स्वरूप कौन है, श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी ये शक्ति के रूप में भगवान की बहुत ही अति मधुरता से माधुरी रस में सेवा करती रहती है। और फिर योग माया से ही महामाया का निर्माण होता है जो बहिरंगा शक्ति है, और जिसका स्वरूप कौन है, पार्वती देवी, दुर्गा देवी, चंडिका देवी जो है ये भगवान की महामाया शक्ति है, जो अपने प्रभाव से इस दुनिया के लोगों को भगवान नहीं है, भगवान नहीं है इस भावना में वश करके रखती है, जिससे भगवान को हम भूल जाते हैं, अपने अस्तित्व को भूल, समझते हैं कि हम शरीर हैं, हम आत्मा नहीं हैं, वास्तविक में हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। इस सत्य को माया महामाया के प्रभाव से हम भूल जाते हैं, और जब हम महामाया का प्रभाव छोड़कर योग माया का प्रभाव स्वीकार करते हैं तो हमको पुनः याद आता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, और आत्मा भगवान का अंश है, और हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम भगवान की सेवा करें। तो योग माया देवी यहाँ पर विराजमान है, हमारे लिए वो श्रीमती राधा रानी हैं। इस पर्वत पर छोटी सी अवस्था में वासुदेव जी आकर खेला करते थे इस मंदिर में। लोग समझते थे उस समय जिस तरह से, जिस प्रकार के कार्य यहाँ पर वासुदेव यहाँ पर आके करते थे, वो समझते थे कि ये योग माया देवी के साथ में खेल रहे हैं, यहाँ पर आके संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस पर्वत पर अनेक बार वासुदेव जी आकर यहाँ पर लीला किया करते थे, और परशुराम ने इसके साथ साथ कुंजारगिरी पर देवी को स्थापना किया, और इसी क्षेत्र में पथरीले पहाड़ों पर चार कुंडों का निर्माण किया। पहला है परशु कुंड, दूसरा है बाण कुंड, तीसरा है गदा कुंड, और चौथा है धनुष कुंड। तो इन चारों कुंडों का हम आज दर्शन करेंगे प्रसाद के बाद में। और इस पर्वत से जब हम उतरेंगे तो उतरने के पश्चात एक सफ़ेद रंग का मंदिर जैसा एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा, वो जगह की कहानी आपको मैं अगले साल में बताऊंगा। लेकिन आपको इस पर्वत से उतरने के समय जब हम मेन रोड पे बस से उतरेंगे तो राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड में अपना कुंजारगिरी पर्वत रहेगा, ऊपर मंदिर रहेगा, तुरंत जमीन के स्तर पर राइट हैंड साइड में एक छोटा सा वाइट स्ट्रक्चर टेम्पल के रूप में आपको नज़र आएगा, उसको आपको दर्शन करना है। वहाँ पर वासुदेव ने मणिमान राक्षस का वध किया था, उसकी कहानी मैं आपको वहाँ बताऊँगा। जय जय श्री राधे। यहाँ पर कुंजारगिरी देवी को सब लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे और ये प्रार्थना करेंगे कि हम सबको महामाया के प्रभाव से आप मुक्त करो, हम भगवान को भूलकर अपने आप को स्वामी समझते हैं, इस भूल भुलैया को आप नष्ट कर दो और आपके चरणों में रखकर भगवान के व्यक्तित्व की अनुभूति दो, और आपके चरणों में रखकर भगवान की भक्ति भी दो, हमारे जीवन में, इसी जीवन में हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाए आपके प्रभाव से, ये प्रार्थना आप कुंजारगिरी देवी से कर सकते हैं। कुंजारगिरी देवी जी की, कुंजारगिरी पर्वत की, बाजका क्षेत्र की, वासुदेव जी महाराज की, ताई गौर प्रेमानंदे।